Dir ist auch. Alhamdulillahi wakafa wassalamu ala ibadihillazina istafa amma ba'du. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اتقنا علما. تو اس کلاس میں ہم حضرت یوسف قار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ دروس اور نور خانداری میں حسن انتظام میں سے آج کل کھانے کا انتظام یعنی فوڈ مینجمنٹ والا بیان پڑھ رہے ہیں. پچھلی کلاس میں یعنی پچھلے بدھ کے دن ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا اور اس میں تمہید حضرت نے ایسے جیسے باندھی تھی کہ عورتوں کے لیے دلچسپ عنوان ہے یہ, اور اس میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ یہ عورتوں کی ہی ٹیریٹری ہے, عورتوں کا ہی علاقہ ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک لائنس ڈین کی بھی تشبیہ استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو یہ عورتوں کا ہی ہے, لیکن اب حضرت نے یہ بیان رکھا تھا اور اس میں پھر آپ کے اس ایریے کے بارے میں کچھ ٹپس وغیرہ بھی بیان کری تھیں, تو ہم بھی پھر اس کو پڑھ رہے ہیں عرب جگہ. پتہ پتہ کچھ نہیں ہے, یہ تو آپ کا ہی ایریا ہے, آپ ہی کو پتہ ہے, تو آپ بھی کہہ رہی ہوں گی کہ ہمیں پڑھا رہے ہیں کر کے. تو اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں پڑھا رہے, ہم آپ کو بتانے کی جسارت نہیں کر رہے. جو حضرت نے فرمایا ہے بس اسی کو آگے بیان کر دیں گے, لیکن جو ایک اوور آل جو ایک پتہ نا ہائی لیول آبجیکٹیو, ٹھیک ہے, تو ہائی لیول آبجیکٹیو تو بہرحال وہ ہے ہی, ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں ہم کوئی کیا کہتے ہیں تأمل سے کام نہیں لیتے کہ بھی ہمارا ہائی لیول آبجیکٹیو کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہی ہے کہ اس والے ایریے کے جو ہے نا کہ گھر داری گھرستی اور گھر کو سنبھالنا اور گھر والوں کو لے کر کے چلنا, جو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو باقاعدہ یہ مقام عطا فرمایا ہے, یہ صفت عطا فرمائی ہے, یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو یہ ذمہ داری بھی عطا فرمائی ہے کہ اس نے اس ایریے کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے. شی ہیز ٹو ہولڈ دا فورٹ, ٹھیک ہے, یہ گویا کہ قلعہ جو ہے نا انسانی معاشرے کے اکائی بھی کہتے ہیں اس کو, یعنی یونٹ بھی اس کو کہتے ہیں, تو اس کو سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے اگر کوئی قلعے کو سنبھالے گا تو پھر سب کی حفاظت ہوگی, اور اگر قلعے کو سنبھالنا چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں گے ٹو بیکم پارٹ آف دا ادر فائٹنگ, ٹھیک ہے, کسی اور کا فائٹنگ کا یا کسی اور میدان کا حصہ بننے کے لیے چلے جائیں گے, تو پھر قلعہ جو ہے نا یہ پھر دشمنوں کے رحم و کرم پر رہ جائے گا اور اس نے پھر پیچھے سے آ کر کے اٹیک کرنا ہے. بالکل وہی مثال جیسے کہ غزوہ احد میں ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ بٹھایا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے, ٹھیک ہے, تم نے یہاں سے نہیں کھسکنا ہے, تم یہاں پہ بیٹھ کر کے جو دشمن ہے نا اس کو اپنے تیروں پر رکھو, لیکن یہیں پہ بیٹھ کے کرنا ہے, تم نے باہر نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے ٹو بیکم پارٹ آف دا ریئل فائٹ یا مین گیم کا حصہ بننے کے اس میں وہ چلے گئے اور اس کا نقصان, ٹھیک ہے نا, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی زخم لگے اور کتنا جو ہے وہ یعنی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اور کتنا کیا پھیل گیا تھا. تو بہرحال تو اس وجہ سے نا اس والے ایریا کو جو ہے نا وہ پھر سے اجاگر کرنا جو ہے وہ ہم سب کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے, مردوں کی ضرورت ہے, اولادوں کی ضرورت ہے, آگے آنے والی نسلوں کی ضرورت, ٹھیک ہے, پورے معاشرے کی ضرورت ہے. इसी सिलसिले में हम दूसरे जो हमारे दुरुस्त चल रहे होते हैं तो उनके अंदर भी फिर हम इसी किस्म की बातें अक्सर करते रहते हैं। सिर्फ ये नहीं करते, दायरे दरस कुरान के अंदर तो फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो मौजूआत बयान किए हैं वही लेकर के चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे दुरुस्त से यहाँ पे मुराद ये है कि जैसे हमारी बच्चियों के क्लासेस होती हैं तो उसके अंदर हम इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं कि जैसे हाउसवाइफ्स, मुस्लिम हाउसवाइफ्स जो हैं ये क्या कुछ नहीं कर रही होती हैं, या इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या कोई काम नहीं है इनका। तो हु सेज मुस्लिम हाउसवाइफ्स डोंट डू एनीथिंग या डू नथिंग, हु सेज, कौन कहता है कि मुसलमान घरेलू औरत जो होती है वो कुछ नहीं करती है, ठीक है। अगर कुछ नहीं करती है तो फिर वो नहीं करती है, उसको करना चाहिए, लेकिन करने को है तो बहुत सारा कुछ ना। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो जॉब पे जाए, लेकिन वहां जॉब पे चला तो जाए लेकिन वहां पे कुछ करे नहीं, मक्खियां मारता रहे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कि भाई आप जॉब पे जाकर के काम करें ना जो आपके जिम्मे लगाया गया है, आप मक्खियां क्यों मार रहे हैं बैठ करके, आप मक्खियां मत मारें, काम करें, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं कहा जाएगा कि भाई तुम अगर यहां पे बैठ करके जॉब नहीं कर रहे हो तो फिर तुम कोई और काम करना शुरू कर दो, जहां पे काम करने की जरूरत नहीं है वहां पर भी तुम जा जाके काम करना शुरू कर दो, या जहां पे कोई दूसरे लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे जाके काम करना शुरू कर दो। अल्लाह के बंदे, जो तुम्हें काम लगा है तुम वो वाला काम करो, मक्खियां मत मारो, कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि तुम मक्खियां इधर मार रहे हो तो तुम जाके जो है वो किसी दूसरे का काम करना शुरू कर दो। तो ये काम जो जॉब पे जिसने करना था, जो तुमने करना था, ये कौन करेगा फिर, ठीक है। तो ये मामला औरत का भी है कि भाई अगर औरत घर में बैठ के वाकई मक्खियां मार रही है तो उसको कहा जाएगा कि भाई आप मक्खियां मत मारें, मतलब ये मुहावरा है, वरना घर में अगर मक्खियां हो गई हैं तो वो तो मारनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन मुहावरतन इसका मतलब ये होता है कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो भाई इसका सादा सी बात है कि भाई डू राइट, डू द वर्क दैट यू आर सपोज टू बी डूइंग रादर देन लीविंग द होम एंड गोइंग एंड डूइंग समथिंग एल्स, समवन एल्सेस जॉब, ठीक है। तो वही एक बड़ा अच्छा मकाला एक खातून ने लिखा था, उम्मे खालिद उनका नाम है, हम उसको बाकायदा बयान में भी पढ़ चुके हैं, तो उसकी एक्सप्लेनेशंस बहुत तफसील के साथ कर चुके हैं और दोबारा से भी उसको पढ़ रहे हैं कि हु सेज मुस्लिम हाउस वाइव्स डू नथिंग। ये जो नोशन है ना कि जी कुछ नहीं करती हैं, तो भाई नहीं करती हैं, जो करने वालियां हैं ना वो करती हैं, और जो नहीं करने वालियां हैं तो उनको करना चाहिए। और दूसरा आर्टिकल भी इसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने लिखा था कि व्हाई डू सम मुस्लिम्स अंडर प्रायोरिटाइज द रोल ऑफ ए वाइफ मदर, ठीक है। क्यों मुसलमान, कुछ मुसलमान जो हैं वो जो बीवी का रोल है, जो माँ का रोल है, उसको कम अहम अहम क्यों समझते हैं या गैर अहम क्यों समझते हैं? तो उसको बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने डिस्पेल किया था इस नोशन को, ठीक है। तो ये जो हम उमूर खानदारी के मौजूद पढ़ रहे हैं ना, तो वो भी उसी की एक्सटेंशन है, उसी की एक्सटेंशन है। और जैसे कि आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक फ्लायर भी देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इवन जो हमारी यूथ क्लासेस हैं उनके अंदर भी इस टॉपिक को एक दूसरे एंगल से शुरू किया है, सहाबियात की जिंदगी, ठीक है। क्योंकि हमारी जो क्लास है वो सीरत सहाबा के ऊपर थी, तो सीरत सहाबा में हमने अशरा मुबशरा सहाबा का जिक्र मुकम्मल करके अब जो है वो सहाबियात का जिक्र शुरू करना है। पीछे पहली क्लास जो एक तमहीदी क्लास थी ना, अब जो है वो एक्चुअली इंशाल्लाह शुरू करना है, तो वो भी इसी की एक एक्सटेंशन, ठीक है, कि भाई सहाबियात की जिंदगी कैसी गुजरती थी और शैतान ने उसके बारे में कैसी गलत फहमियां फैला दी, उसको भी डिस्पेल करना है, ठीक है। तो उसका टाइटल भी अल्लाह ताला ने दिन में यही डाला के सहाबियात व्हाट दे वर एंड वरंट, वो क्या थी और क्या नहीं थी जो शैतान ने फैलाया हुआ है कि वो ये थी और वो थी, वो फॉर्च्यून 500 बिजनेस वुमेन थी और वो जो है वो जंग लड़ा करती थी और जो है वो ये बादशाहत किया करती थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो सहाबियात क्या थी असल में, उसको हमें हदीस से जो है वो फिर डिस्कस करना है इंशाल्लाह। तो बहरहाल, तो ये तो ओवरऑल पिक्चर है ना इसकी। बाकी ये कि जो खानों के बारे में चंद मुफीद टिप्स इस बयान के अंदर हजरत ने फरमाई थी, तो वो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, हमने शुरू कर लिया था ना। तो सब्जियों और फलों के मुताबिक यहाँ से हमने शुरू करना था, और ये बात भी हमने पिछली क्लास में बता दिया था कि ये हजरत जी ने जो है ना वो कोई इल्हामी बातें नहीं करी हैं, उनके ऊपर कशफ इल्हाम हुआ था और उन्होंने आगे से फिर औरतों को कशफ के नतीजे में बताया कि उनको अपनी किचन ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बल्कि उन्होंने या तो किसी किताब से उसको नकल किया है या इंटरनेट के ऊपर सर्च करके भी बहुत सारे टिप्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वहीं से उसको नकल किया है। ठीक है, तो इसको कोई इल्हाम ना समझे और ये सब ना कहें कि नहीं भाई हजरत ने फरमाया तो मैंने ऐसे ही करना है, चाहे पता चले कि नहीं थी वो सही वाली बात। ठीक है, तो जब आपको सही बात पता चले तो आप उसको रिप्लेस कर लें, कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, कोई फर्क कोई इसमें मसला नहीं। अच्छा, तो सब्जियों और फलों के मुताबिक टिप में फरमाते हैं कि हम बात शुरू करते हैं किसी सब्जी को छीलने और काटने से, क्योंकि खाने की इब्तिदा आमतौर पर यहां से होती है, काटने छीलने से ना, किचन के अंदर असल में काम यहाँ से शुरू होता है, बाकी तो बाजार से आ रहा होता है, तो बाजार से आ जाता है तो फिर सब्जियों में कुछ विटामिन्स होते हैं जो वाटर सोल्यूबल यानी पानी में हल पजीर होते हैं, यानी आप लोग डालेंगे तो वो पानी में घुल जाएंगे। अगर सब्जी को पहले काटा जाए और फिर धोया जाए तो ये विटामिन सब जाया हो जाते हैं, इसलिए उसूल ये बनाएं कि जब भी सब्जी आए तो उसको पहले इसी हालत में धोएं फिर उसके बाद काटें। ठीक है, ताकि पानी में हल पजीर विटामिन्स जाया ना हो जाए, यानी ये जो सब्जी की खाल होती है जिल्द होती है, ठीक है, तो वो इस को सॉल्व होने से ना, इसके इसके अंदर जो असल में गूदा होता है इसका, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है ना। ठीक है, तो उसी हालत में इसको यानी बगैर छीले हुए जो है उसको धो लेंगे तो अंदर का गूदा जो है वो एक्सपोज नहीं होगा, फिर उसके बाद आप उसको छील लें। तो किसी सब्जी को छीलना हो तो जितना कम से कम छीले उतना बेहतर है, इसलिए कि ये विटामिन सब्जी की स्किन के ज्यादा करीब होते हैं, अगर ज्यादा छील देंगी तो ये विटामिन्स भी जाया हो जाते हैं। ठीक है, तो फल तो आप ऐसे नहीं खा सकते ना, फल जो है वो अगर उसका मोटा छिलका है तो उसको मोटा छिलका ही उतारना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि जी आपने छिलके का हिस्सा जो है ना फिर आप खाना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि वो कड़वा भी लगता है और फिर उससे टेस्ट पूरे फल की टेस्ट खराब हो जाता है, लेकिन सब्जी में फरमा रहे हैं कि कम काटें। ठीक है, अब वो पकती भी तो है ना आगे जा करके, तो पकने में फिर वो डिजॉल्व भी हो जाएगा उसके जो थोड़ा सा आपने पतला छिलका काट करके, यानी पतला छिलका काटा है और बाद में छोड़ दिया है, तो वो फिर पकने के दौरान उसका इंशाल्लाह कोई अच्छा हल निकल आएगा। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं उनको हमने हमने सुना, ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा खाली छिलका नहीं काटते बल्कि छिलके के बाद भी कुछ काट देते, ठीक है, तो फिर उसके बाद उसमें कुछ बचता ही नहीं है सब्जी के अंदर, तो आप क्या उसके अंदर पका रही हो फिर, वो बहरहाल कुछ कल्चर्स का इस तरह का पकाने का स्टाइल होता है। अगर आप आलू और एग प्लांट यानी बैंगन है ना, एग प्लांट को काटें तो उनको आप पानी के अंदर डालें, इससे उनकी डिसकलरेशन, यहाँ पे लिखने वाले ने थोड़ा गलत लिख दिया है, यानी डिसकलरेशन के रंगत में तब्दीली नहीं होगी, यानी उसकी रंगत उतरने वाला मामला नहीं होगा। अगर आप सब्जी को पानी में बॉईल करें तो उस पानी को आप फेंके नहीं, उसको ग्रेवी के लिए रख लें, यानी शोरबा बनाने के लिए उसको रख लें। बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो है ना, ये वेजिटेबल खाने का असल तरीका है, जिससे कि वेजिटेबल के सबसे ज्यादा फायदे मिलते हैं, लेकिन जाहिर है हमारे देसी तौर तरीके के अंदर जो है ना वो जब तक पके नहीं और तेल में अच्छी तरीके से तले नहीं, और तो उस वक्त तक हमें हजम ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो सेहत के लिए सबसे मुफीद तरीका है वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स के खाने का है। अब तो जो लोग बॉइल्ड खाते भी थे ना, यानी यूरोपियंस, ठीक है, तो उनको भी हमने मसालों पे लगा दिया, ठीक है, तो वो भी अब खाना वो बिरयानी के रसिया बन गए हैं, अब उनको भी बिरयानी ही समझ में आती है, लेकिन पहले वो लोग बॉईल करके खाते थे। बहरहाल, तो जो औरतें फल काट कर पेश करती हैं, यानी मेहमानों के सामने फल काट के रखती हैं, तो उनको ये मुश्किल पेश आती है कि जब सेब को काटा जाए और वो कुछ देर पड़ा रहे तो वो ब्राउन हो जाता है। अगर आप सेब को काटें और कटी हुई साइड पर थोड़ा सा लेमन जूस लगा दें, तो फिर वो कितनी ही देर पड़ा रहे ब्राउन नहीं होता, ठीक है, तो ब्राउन नहीं होता, लेकिन पता नहीं उसके टेस्ट का क्या बनेगा, मैंने कभी इसका तजुर्बा नहीं किया, हमारे यहाँ इस तरह की कोशिश नहीं की गई है, तो बहरहाल आप करके देख लीजिएगा। अच्छा, अगला है, धनिया पुदीना वगैरह को हमेशा मुस्लिम लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में मसलन होता है ना, मसलन मसलन क्लॉथ बैग के अंदर डालकर फिर फ्रिज के अंदर रखें, इससे उनके ताजा रहने का टाइम लंबा हो जाता है। हजरत ने तो मसलन ही कहा था मैं बयान के अंदर, लेकिन लिखने वाले को मुस्लिम समझ में आया तो मुस्लिम लिख दिया। तो धनिया पुदीना के सीड्स हो या जो है वो लीव्स हो, उनको इस तरह का जो मसलन क्लॉथ होता है वो कॉटन का एक फैब्रिक होता है जो कि फूड सेफ कहलाता है, तो उसके अंदर इसको रैप करके रखें। अच्छा, अगर सब्ज मिर्चों को स्टोर करना हो तो उनकी स्टेम जो टहनी लगी हुई होती है उसको तोड़ दिया करें, ये चीज उनके लिए उनके लंबे अरसे तक ताजा रहने में मददगार होती है। एक इंटरेस्टिंग टिप है, खैर आपको पहले से भी करनी होती। अगर आप प्याज छील रही हैं तो उसको छीलते ही 10 मिनट के लिए पानी के अंदर डाल दें, यानी बिल्कुल ऊपर की जो लेयर्स जो छील के अलग कर देनी होती है ना, तो वो वाली लेयर्स जब अलग कर देते हैं तो फिर उसको पानी में डाल दें, इसके बाद उसमें से गैस नहीं निकलेगी और आपको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अक्सर औरतें जब प्याज काटती हैं तो आंखों से बहुत पानी निकलता है क्योंकि प्याज के अंदर से सल्फर गैस निकलती है, ठीक है, तो ये जो रोने की रीजन होती है ना, ये वो टीयर गैस होती है, जैसे पुलिस वाले जब किसी हुजूम को डिस्पर्स करने के लिए ना उसके ऊपर टीयर गैस फेंकते हैं, तो वो क्या है, सल्फर गैस होती है, तो वो प्याज के अंदर से निकल रही होती है, तो वो जो है ना फिर हजरत ने तो फरमाया था टेरेबल होती है, टेरेबल यहाँ पे इन्होंने टीयरफुल लिख दिया है, तो यानी बहुत तकलीफ दे हो जाती है खुवातीन के लिए, आपके पास ही पानी बह रहा है, आंसू बह रहे हैं, तो उसे पानी के अंदर 10 मिनट के लिए सोक कर दें यानी भिगो दें, तो सल्फर गैस खुद बहुत खत्म हो जाती है और आपकी आंखों से पानी नहीं आएगा। ठीक है जी, सब्जी को काटने के लिए हमेशा चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर मार्बल पर काटेंगी तो जो छुरी चाकू है वो ब्लंट यानी कुंद हो जाएगी, चाकू कुंद हो जाएगा और छुरी कुंद हो जाएगी, तो मार्बल बोर्ड्स होते हैं वो यूजली मेरे ख्याल में गोश्त काटने के लिए शायद ज्यादा सही होता है मार्बल बोर्ड अगर आप इस्तेमाल करें, वरना जो है वो लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड्स इस्तेमाल करें। अगर मकई के दाने निकालने हैं यानी कॉर्न आप पूरा जैसे पत्ते वत्ते के साथ खरीद करके ले आई है, तो आप उसके पहले ऊपर से पत्ते हैं वो जो छीलते हैं पूरा उसको, फिर उसके बेस यानी जो तने वाली साइड होती है यानी जो वो साइड जिससे कि वो अपने दरख्त से जुड़ा होता है ना, वो लकड़ी बाकायदा एक लगी होती है उसकी, तो उसको पहले काट दें, फिर उस बेस के ऊपर जो बेस बने वहां पर उसको खड़ा करें, उससे खड़ा करें, और उसका जो टिप है सिरा उसको ऊपर की तरफ रखें, यानी गोया कि जिस तरह एक एक मिसाइल नहीं होता तो नीचे से मोटा होता है ना, ऊपर से जो जा करके वो पतला हो जाता है, ठीक है, तो इस शक्ल में उसको खड़ा कर दें, और फिर चाकू की बैक साइड से आप उसके ऊपर से जो दाने हैं उनको पील ऑफ करें, अगर फ्रंट साइड से करेंगी तो जो शार्प साइड होगी तो उससे तो वो कट जाएंगे, तो जो बैक साइड है ना वहां से उसको पील ऑफ करें, सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से छिल कर उतर जाएंगे, मुश्किल भी पेश नहीं आएगी, ठीक है, मैंने खुद कभी ये ट्राई नहीं किया, आप करके देख लिया। जब आपने फल और सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में रखना हो तो कोशिश करें कि उनको अखबारी कागज में लपेट कर रखें, इस तरह वो लंबे अरसे तक तरोताजा रहेंगे। न्यूज़पेपर के ये जाहिर है कि फल और सब्जियों को छिलका उतारने से पहले, है ना, मेरा ख्याल यही है। तो क्योंकि न्यूज़पेपर में फिर वो कार्बन वगैरह भी होता है, तो वो रिलीज होकर के आपके खाने की चीज में लग जाएगा, तो उसको धोना होना पड़ेगा, फिर पता नहीं धो करके भी उतरे या ना उतरे, तो उस वजह से छिलके की साथ ही अगर उसको न्यूज़पेपर में रैप करके रखेंगे तो फिर छिलका तो आपको उतारना ही होता है बाद में, खाने से पहले या पकाने से पहले। तो इस तरह वो लंबे अरसे तक तरोताजा रहेंगे। एक और बड़ी नुक्ते की बात है कि कई मरतबा ड्राई फ्रूट्स को किसी स्वीट डिश में डालने के लिए चॉप करना होता है तो औरतों को मुश्किल पेश आती है। जब भी आपने ड्राई फ्रूट को काटना हो तो उसको 1 घंटे के लिए फ्रीज कर दें, उसके बाद आप अपने चाकू को कुछ देर गर्म पानी में रखें ताकि वो गर्म हो जाए। अब जब उसको आप काटेंगी तो आप देखेंगी कि इतनी आसानी के साथ ड्राई फ्रूट कट जाएगा कि आपको हैरानी हो। चाकू को गर्म करने के लिए जाहिर माइक्रोवेव में तो आप नहीं डालेंगे, वरना तो पता है माइक्रोवेव में मेटल जाता है, तो फिर वो बड़ा मसला हो जाता है। तो उसको गर्म पानी में डाल देंगे तो उस तरह से वो आसानी से गर्म हो जाएगी, चाकू या छुरी होगा। अगर आपने कोई चीज फ्राई करनी है तो पहले सिर्फ ऑयल को सब्जी और मसाला जात डाले बगैर अच्छी तरह गरम करें, यानी ये आपसे ज्यादा कौन जानता होगा कि भाई ऑयल अगर ठंडा होना तो उसके अंदर चीज डाल देते हैं तो फिर वो वैसे अच्छी तरीके से नहीं पकती है, पहले उसको गर्म करने फिर उसके बाद उसमें चीजें डालें, जैसे वो प्याज वगैरह लाल करने के लिए गर्म तेल के अंदर डाला जाता है। इतना तो हमने भी किया है, बल्कि कभी करना पड़ा है, वो वाले साहब को हमारे इधर ज्यादा शौक होता है करने का। अच्छा, तो उनके साथ तो किया था। अगर आपके पैन यानी बर्तन के अंदर मसाला चिपक रहा है तो उसका मतलब यह है कि आपके पैन के अंदर ऑयल की मिकदार थोड़ी है, तो ऑयल की मिकदार बढ़ा दें। अच्छा, तो ये नॉन स्टिक पैन जो पहले होते थे अब वैसे दोबारा वापस आ गए स्टिक पैन, सॉरी, जो 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 स्टिक पैन होते थे ना उनमें ऐसा होता है, जो रेगुलर मेटल के बने हुए होते थे तो उनमें फिर चीजें चिपकती हैं, तो साइंस ने जो है वो फिर नॉन स्टिक पैन बना दिए। तो नॉन स्टिक पैन वैसे इसमें फायदा ये हुआ कि भाई अब चीजें जो है वो चिपक नहीं रही होती, लेकिन जो नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए जो मटेरियल होता है तो उसके बारे में फिर ये भी इन लोगों ने ही बताया, हमने कुछ थोड़ी बताया, यही जो बनाते हैं वही बताते नहीं हैं कि इसको अगर आप ओवर हीट कर लें ना 260 डिग्री सेल्सियस, जो कि जाहिर है कोई किसी औरत के पास ऐसा थर्मामीटर तो होता नहीं है किचन के अंदर के जो मेजर करेगा कि कितना इसका हीट चल रही है आपके पतीले के अंदर, लेकिन नोटेड है कि अप्रोक्सीमेटली 260 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए ना तो फिर ये जो नॉन स्टिक मटेरियल होता है पैंस के ऊपर लगा हुआ, तो इसमें से फिर टॉक्सिक फ्यूम्स जो है ना वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं, और इससे जो है वो कुछ बीमारी शुमारी भी हो सकती है, फीवर कोई खास किस्म का होता है वो हो सकता है। पहले तो एक और मटेरियल जो तो होता था ना वो, उससे तो कैंसर भी हो जाता था, ठीक है, यानी इतने टेम्परेचर पे हीट होने से तो उसके जो फ्यूम्स निकलते थे तो उससे कैंसर भी हो जाता था, लेकिन क्लेम ये है कि वो मटेरियल अब इस्तेमाल नहीं होता, 2013 तक इस्तेमाल होता था, 2013 के बाद अब वो इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब जो इस्तेमाल होता है तो उससे भी कुछ ना कुछ सेहत की खराबी का ताल्लुक बताते हैं। तो ये नॉन स्टिक पैन आए, अब जो है ना वो मामला फिर वही बैक टू स्क्वायर वन, स्टिक पैन की तरफ जा रहा है बिल्कुल, जो हमारे यानी वालदा भी नहीं बल्कि शायद, हाँ, वालदा और वो पिछली जनरेशन के लोग जो है ना जो मेटल का कोर ऑयल, सॉरी कोर आयरन टाइप का जो इस्तेमाल करते थे ना वो अब दोबारा से इस्तेमाल में आ रहा है। बहरहाल, तो पैन के अंदर मसाला चिपक रहा है तो फरमाया कि आपके पैन में ऑयल की मिकदार कम, तो ऑयल मत हम। अच्छा, फिर उसके बाद पकौड़े और टिक्कियों वगैरह के मुतालिक टिप्स। तो टिकियाज यानी जैसे नगेट्स हो गए, या जो है वो शामी कबाब वगैरह टाइप की जो टिकियाँ जिसको कहते हैं, और पकौड़े तो रमजान में, कुछ लोगों का रमजान कबूल नहीं होता जब तक पकौड़े और चने ना खाए जाए उसके अंदर। तो उसके बारे में फरमाया कि अगर गरम गरम ऑयल के अंदर आधा चाय वाला चम्मच बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जिसको कुछ लोग कहते हैं डाल दिया जाए, तो इसमें पकौड़ा बनाया जाए, तो इससे पकौड़ा नरम और अच्छा बनता है। सख्त पकौड़े बाकी अच्छे नहीं लगते, नरम पकौड़े अच्छे लगते हैं। उसका यह तरीका है कि आधा चम्मच चाय के चम्मच वाला बेकिंग सोडा, चाय के चम्मच के बराबर बेकिंग सोडा डाल दिया। अगर आप क्रंची पकौड़ा बनाना चाहती हैं तो अंडे की सफेदी, इससे आपके पकौड़े क्रंची बने। क्रंची को उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करें? अगर आप आलू की टिकियां बना रही हैं तो तसल्ली कर लें कि आलू अच्छी तरह से उबल गए हैं, फिर उनको पहले ठंडा कर लें, बल्कि बेहतर यह है कि आप उनको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। ये चीज आलू के स्टार्च के सेटल डाउन होने में मदद करती है। स्टार्च नशास्ता जो आलू के अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसके ना सेटल होने में, यहाँ पे इन्होंने सेट होने में लिख दिया है लेकिन असल में उर्दू में सेटल का क्रिस्पी, हाँ क्रंची और क्रिस्पी, क्रिस्पी भी अंग्रेजी का ही लफ्ज है, तो उर्दू का तो लफ्ज नहीं है। बहरा खस्ता, हाँ ये सही है, खस्ता। क्रंची इन उर्दू मीन्स करारे, करारे, हाँ करारे भी कहते हैं और खस्ता भी, प्रॉपर जो उर्दू है वो खस्ता है। कुरकुरे भी कहते हैं, कुरकुरे तो हाँ कुरकुरे भी कह सकते। चले, तो ये स्टार्च के सेटल डाउन होने में मदद करती है। आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट्स सपोज्ड टू मीन, सेटल डाउन होना स्टार्च का। अच्छा, अगर आपने पूरी बनानी है, अच्छा आलू की टिक्कियों के लिए जहन में आया था वो जो शायद आलू के कटलेट्स वगैरह बनते हैं वो शायद याद। अगर आपने पूरी बनानी है तो पहले आप इसको रोल करके भीगे हुए मसलन क्लॉथ के अंदर 1 घंटे के लिए रख दें और फिर उसको फ्राई करें, तो इससे पूरी अच्छी बनती है। पूरी से मुराद यहाँ पर आलू पूरी वगैरह का जो नाश्ता हो करना, पूरी वगैरह वो वाली पूरी लगेगी। अच्छा, उसके बाद फिर पूरी को ज्यादा क्रिस्पी, क्रंची, करकरे, खस्ता, जो भी आपको बनाना है, तो बनाने के लिए जब उसको आप भून रही हो तो भूनते हुए गंदम के आटे के अंदर थोड़ा सा चावल का आटा मिला दें, तो इससे पूरी क्रंची बनती है। चावल का आटा पहले घर में बनाना पड़ेगा, या बाजार में अगर मिलता है तो बनाना पड़ेगा, फिर उसको पूरी बनाने के लिए इस तरह से। अच्छा, जब पकौड़े के लिए बेसन तैयार कर रही हो तो इसमें अगर आप थोड़ा सा कॉर्न फ्लावर भी मिला दें तो इससे पकौड़े खूब क्रिस्पी होंगे। कॉर्न फ्लावर काम की चीज है, तो पीछे बेकिंग सोडा भी था कॉर्न फ्लावर भी, ठीक है जी। तो पकौड़े वगैरह की भी टिप्स बता दिया जाता है। फिर उसके बाद ऑमलेट यानी आमलेट और ग्रेवी के मुताबिक टिप्स। तो ऑमलेट जितना फ्लफी हो यानी नरम हो उतना ज्यादा अच्छा लगता है, बेशक ऐसा ही है। तो इसका तरीका यह है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेक करें, हिलाएं, जिसको हम तो फेटना कहते हैं। जब अंडे को तोड़ करके उस डालते हैं प्याले में और उसके अंदर फिर आप प्याज वगैरह से मिलाते हैं, तो फिर उसके बाद हम तो ये तो हमें भी बनाना होता है, फोर्क से जो काटा होता है खाने वाला, तो कांटे से जो है ना उसको खूब फेटेंगे, चाहे किसी मशीन के जरिए से रहें, अगर कोई ब्लेंडर टाइप का, कोई हैंडी ब्लेंडर टाइप की चीज है शेकर, तो उसके जरिए से भी उसको कर सकते हैं। हवा के पार्टिकल्स, जर्रात जितना ज्यादा अंडे में मिल जाएंगे उतना ज्यादा ये नरम बनेगा, बिल्कुल जैसे लस्सी बनाते हैं ना, माशाल्लाह उनको लस्सी बनानी आती है, आज सुबह भी हमने भी बनाई, तो वो जितना आप फेटेंगे लस्सी को उतना वो फ्लफी बनेगी, उतना उसके अंदर झाग बनेगा और इतना जो है ना वो मजेदार लस्सी बनेगी। इसी तरीके से ऑमलेट बनाने के लिए तो औरतें जब गरम तेल के अंदर गोश्त डालती हैं तो ऑयल के छोटे छोटे छींटे इस तरह उड़ते हैं कि उनके हाथ जलते हैं। तो इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि फ्राइंग पैन के अंदर नीचे थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए, फिर उसके बाद अगर इसमें गोश्त डाला जाए तो वो स्प्लैटर नहीं होता। तो नमक अगर आपने जाहिर है पहले डाल दिया है स्प्लैटर होने से बचने के लिए, तो फिर ऊपर से जो आपने मसाले में नमक डालना था उसको भी उसके हिसाब से कम कर दे, वरना अगर वो आपने उतना ही डाला और नीचे जो है वो ये नमक डाल दिया तो फिर कहीं आपका या शोहर साहब का बीपी ज्यादा हाई ना हो जाए। ठीक है, आजकल जो खास तौर पर ये नमक होता है सी सॉल्ट ही इस्तेमाल होता है, बाजार में जो आम दस्तियाब होता है वो सी सॉल्ट होता है, तो वो तो सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। वैसे तो जिसको ब्लड प्रेशर होता है तो उसको तो इवन ये जो जो हिमालयन सॉल्ट होता है पत्थर का नमक, पहले तो बिल्कुल नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था, अब तो माशाल्लाह हिमालयन सॉल्ट पाकिस्तान में जो वो काने हैं इसकी वहां से निकल निकल करके हर तरफ जा रहा होता है, यानी कई साल हो गए अब तो उस बात ओके निकल निकल के दोस्त बनते हैं। तो वैसे तो लड़ाइयां करते रहते हैं लेकिन इन सब मामलों में दोस्ती है सारी की सारी, तो वो इंडिया जाता है, फिर इंडिया से पैकेजिंग होकर वो बाकी दुनिया में जा रहा होता है, और वरना फिर पाकिस्तान से भी कुछ जा रहा होता है पूरी दुनिया में, तो वो सेहत के हिसाब से ज्यादा बेहतर होता है सॉल्ट सी सॉल्ट के मुकाबले में, लेकिन बीपी उससे भी रेज राइज होता है। अच्छा, तो नमक का इस तरह से ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ग्रेवी मसाला तैयार करें इस तरह से उसका रंग और जायका बरकरार रहेगा। तो शोरबे का रंग बनाने के लिए हमेशा पके हुए और सूख टमाटर इस्तेमाल करें, अगर इसमें कोई सब्ज हिस्सा आ जाए तो निकाल दें उसको। ठीक है, पके हुए टमाटर बाजार से खरीद से है, वरना अब तो कैंस के अंदर मिलते हैं ना ये प्यूरी, टोमेटो प्यूरी वगैरह मिलते हैं, तो उसमें तो वो खास ऐसे ही टमाटर से बात करते हैं, तो उसको भी डायरेक्ट लेकर के भी पॉलिथीन डाल देती हैं। अच्छा, एक बहुत अहम नुक्ता सुनिए कि ग्रेवी में गार्लिक यानी लहसुन और जिंजर यानी अदरक डालें, लहसुन 60% और अदरक 40% की निस्बत से डालें, तो 60 और 40 के तनासुब से दोनों चीजों को डालें, यानी पेस्ट होता है ना गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो ग्रेवी के जायके को बहुत अच्छा बना देता है। तो घर में पेस्ट बनाए तो ज्यादा अच्छा है, जो बाजार में मिलता है तो वो फिर जाहिर प्रिजर्वेटिव उसमें उन्होंने डाले हुए होते हैं, क्योंकि वो कई कई महीने जो है वो शेल्फ में पड़ा रहता है, लोग आके खरीदते हैं, तो घर में बनाए तो ज्यादा अच्छा हो गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। औरतें ग्रेवी तैयार करती हैं तो जब देखती हैं कि मेहमान ज्यादा हैं तो उसको बढ़ाने के लिए ठंडा पानी डाल देती हैं, इससे खाने का जायका खराब हो जाता है, तो उसे बढ़ाने के लिए हमेशा गर्म पानी डालें ताकि जायका बढ़ता रहे। पानी को अलग से गर्म करें फिर उसके बाद ग्रेवी को बढ़ाने के लिए ठंडे पानी से। चलें, ये भी हो गया ऑमलेट्स और ग्रेवी के मुताबिक टिप्स। अब जो है वो कुकिंग यानी पकाने के मुताबिक चंद मुफीद टिप्स। अब कुकिंग के मुताबिक कुछ टिप्स देख लीजिए कि 1 कप दाल बनाने के लिए इसमें 2 से 3 कप पानी डालें। अगर आपके पास साबित चने हैं तो उनको पूरी रात पानी में भिगो कर रखें, और अगर दूसरी दाल है तो पकाने से 1 घंटा पहले उसको भिगो देना काफी होता है। चने की दाल बनाने के लिए आप पूरी रात पानी में भिगो के रखें, हमने देखा था अपनी वालदा को भी कि वो पूरी रात जो है ना वो येलो वाली जो होती है चने की दाल वो पड़ी रहती है पानी के अंदर भिगो के, अब उतनी पकती नहीं है इस वजह से वो वाली दाल कितना है नहीं, तो दूसरी दालें पकती हैं। बाकी दालें जो है वो 1 घंटा भिगो देने से काफी हो जाती है। अच्छा, कुलचा और कचौरी बनाने के लिए जब पेड़ा बनाएं तो 1 टेबल स्पून यानी बड़ा चम्मच गरम ऑयल का उसमें डाल दें। कचौरी तो आसान सी चीज है, मतलब हमें भी पता है क्या चीज होती है, लेकिन कुलचा जो है ना, ये ख्याल में डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट चीज को कुलचा कहते हैं, तो हमारे यहाँ शायद डिफरेंट सिंपल कुलचा हो। अगर आपने डेजर्ट बनानी है, डेजर्ट बना, डेजर्ट नहीं डिजर्ट बना, तो डिजर्ट फुल क्रीम मिल्क वलाई वाले दूध से बनाए ताकि गाढ़ा क्रीमी मिक्सचर बने। अब तो ये चीजें बाजार में भी बहुत मिल जाती हैं, इस तरह की क्रीम्स वगैरह, और इवेपोरेटेड मिल्क, और बनाने क्या क्या सैचुरेटेड मिल्क, तो समझ रहे होते हैं। तो इससे फिर खूब पैटर्न किस्म का डिजर्ट होगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगला लिखते हैं कि या फरमाते हैं कि अगर आपने, अच्छा, फिर जब भी दही को मसाले में डाला तो उसको अच्छी तरीके से फेंट लेना चाहिए। जितना दही को ज्यादा फेंटेंगी और उसको आहिस्ता आहिस्ता मिलाएंगी उतना मसाला बेहतर बनेगा। ये तो बकायदा मुहावरा भी है उर्दू जुबान के अंदर, दही को फेंटना, यानी किसी चीज को फेंटना बहुत ज्यादा हो तो उसको दही फेंटने से भी ताल्लुक किया जाता है। अच्छा, अगर आपने दूध को उबालना है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, फिर ये बर्तन के साथ स्टिक नहीं करेगा। तो बाजार वाला दूध में पानी मिला है तो जाहिर है वो मसला होता है, लेकिन घर में खातून इस मकसद के लिए पानी मिलाए तो अच्छा होता है। बहरहाल दूध जितना है मेरे ख्याल में उतना ही रहेगा, अंडा पानी मिलाएंगे उससे वो दूध जितना आपने डाला है उतना मिल ही जाएगा। अगर आपने घर में लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट बनाना है, लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट बनाना है, तो इसमें 1 चाय का चम्मच गरम तेल डाल दें और हल्का सा नमक भी डाल दें। इससे उसका जायका भी बरकरार रहेगा और ये पेस्ट ज्यादा फ्रेश भी रहेगा। बात हुई थी ना कि लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट आप घर में बना लें, तो उसके लिए फरमा रहे हैं कि 1 चाय का चम्मच गर्म तेल डाल दें और हल्का सा नमक भी डाल दें, तो इससे उसका जायका भी बरकरार रहेगा और ये पेस्ट ताजा भी रहेगा। एक बहुत मुफीद टिप है कि अगर आपने चावलों को बॉईल करना है तो इसमें चंद ड्रॉप्स नींबू के डाल दें और 1 टीस्पून ऑयल का डाल दें, तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि चावल का हर दाना दूसरे से अलग अलग होगा। वो जो हर दाना दूसरे के साथ मिल जाता है और बिल्कुल खिचड़ी बन जाती है वो नहीं, यानी चावल तो वही अच्छा लगता है जिसके अंदर हर दाना जो है ना वो जुदा जुदा नजर आए। तो वो फिर चावल की अपनी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपने कैसा बासमती चावल खरीदा है और कहाँ का वो चावल है, मोटा चावल है, पतला चावल है वगैरह, क्या क्या इसमें किस्में होती हैं, तो वो खरीदने की क्वालिटी अलग होती है, अच्छा चावल बुरा चावल, और फिर पकाने के बाद तो उतना अच्छा अलग अलग से हो, वरना फिर वो गीला हो जाता है चावल तो फिर आपको पता है कि वो अच्छा नहीं लगता। खिचड़ी बनानी है तो फिर खिचड़ी बनाए, अगर चावल बनाना है तो फिर चावल बनाए, तो वो अलग अलग चीजें उनको आपस में मिक्स ना कर दें, बना चावल रहे थे लेकिन बन खिचड़ी गई। औरतें कई दफा नूडल्स को बॉयल करती हैं तो नूडल्स कभी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और खाने में अच्छी नहीं लगती, तो बॉयल होने के फौरन बाद उनको नॉर्मल ठंडे पानी में डाल दें तो वो अलग अलग रहेंगी। आलू जो नमक मिले पानी में 20 मिनट तक भिगोए गए हों ज्यादा आसानी से बेक किए जा सकते हैं। बेक पोटैटोस 20 मिनट पानी में भिगो करके। अच्छा, बेकिंग में अहम टिप है, स्मॉलर द आइटम हायर द बेकिंग टेम्परेचर, यानी जितनी कोई आइटम छोटी होगी उतना बेकिंग टेम्परेचर ज्यादा हो। चुनाचे अगर चॉकलेट कुकीज बनानी हो तो 500 डिग्रीज पर उसको 4 मिनट के लिए आप तैयार करें तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो बेकिंग वगैरह के लिए तो फिर लोग ओवन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर डिग्रीज वगैरह का भी होता ही है, तो वो फिर आप कर सकते हैं। तो चॉकलेट्स के लिए 500 डिग्रीज पर। अच्छा, एक चीज जो औरतों को अक्सर परेशान करती है कि मसाला जात को स्टोर करती हैं तो उनके अंदर से खुशबू चली जाती है, तो इसमें एहतियात ये करें कि मसाला जात को ठंडी और अंधेरी जगहों पर स्टोर किया करें, ना कि अपने चूल्हे के ऊपर। यानी उसके जो रैक्स हैं, शेल्व्स हैं, वो चूल्हे के ऊपर जो है ना, उसमें ना करें, बल्कि हट करके दूसरी जगह पे करें। तो चूल्हे के ऊपर वाले जो अगर शेल्फ हैं तो वहां पे आप कुछ और चीज स्टोर कर लें मसाले जात के अलावा। रोशनी, नमी और हरारत, ये तीन चीजें हैं जो मसालों की खुशबू जाया होने का सबब बनती हैं। मसालों को अरबी में क्या कहते हैं, किसी को पता? मसालों को अरबी में भारत, ठीक है, भारत ये जो मुल्क का नाम है ना, हिंदुस्तान, इंडिया, तो उसका एक नाम है भारत। और महाभारत ये बाकायदा हिंदुओं की एक कोई रिलीजियस किताब भी है ना, महाभारत। तो इस मुल्क का नाम भारत जो है ना, वो फिर मसालों की वजह से पड़ा, क्योंकि यहाँ से मसाले जो है ना वो आते थे अरब के अंदर। उस जमाने में क्या मसाले आते होंगे। और ये फिर हमने बचपन में जो एक किताब पढ़ी थी, यूरोपियंस जो निकले ना, वो भी मसालों की तलाश में निकले थे। तो पहले तो वो क्रिस्टोफर कोलंबस निकला, गालिबन वो भी स्पेन से निकला था। तो वो निकला तो वो भारत यानी मसालों के चक्कर में था, लेकिन पहुंच गया वो अमेरिका, तो वहां पर जाकर के उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। तो फिर उसके बाद एक दूसरा था पोर्चुगल का, वास्को डे गामा, ये बचपन से मुझे याद है। तो वास्को डे गामा साहब जो है ना, वो जो निकले तो वो सही तरीके से पहुंच गए बिलाफिर, हाँ इंडिया ही पहुंच गए वो बिलाफिर, पूरा वो अफ्रीका से नीचे होते हुए इंडियन ओशन से होते हुए बिलाफिर वो इंडिया पहुंचे, और वहां से फिर उनको भारत जो है ना मसाले वगैरह मिल गए। और फिर उसके बाद वो पीछे पीछे उनके ये ब्रिटिश पहुंचे और उन्होंने फिर वो किया जो हमारे साथ हुआ हुआ है, जिससे हम आजाद बाय द वे हो गए हैं आजाद 14 अगस्त को। अब थोड़ी देर में मनाएंगे अपनी आजादी। एक स्कूल का नाम किसी ने लिखा इस्लामाबाद में ना, तो पता नहीं वो क्लास में है कि नहीं है, उन्होंने लिखा कि भी मेरा बेटा जो है ना वो इस स्कूल में पढ़ता। तो स्कूल का नाम क्या था? वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर, ठीक है। और वेस्टमिंस्टर क्यों है उस स्कूल का नाम भाई? ठीक है, इस्लाम का जो आबाद है, इस्लाम से जो आबाद है, तो वहां पे स्कूल का नाम जो है वो वेस्टमिंस्टर क्यों है? हालांकि हम तो आजाद हो गए 14 अगस्त को, ठीक है, और उधर 15 अगस्त को आजाद हो गए थे। तो वेस्टमिंस्टर क्या है भाई? ये तो इंग्लैंड के अंदर एक चर्च है, ठीक है, जो कि उनकी तारीख की एक बहुत बड़ी जो है वो इमारत है, तारीखी इमारत है वो वेस्टमिंस्टर एबे, ठीक है। तो हमारे यहाँ स्कूल जो है वो वेस्टमिंस्टर स्कूल क्यों है? ठीक है, तो यही है हमारी आजादी, जिसको कि हम अभी थोड़े दिन में मनाएंगे सारे के सारे मिलकर के। अल्लाह रहम फरमाए हमारे ऊपर, ठीक है ना, और क्या कह सकते। तो बहरहाल, तो क्या बात हो रही थी, मसाले जात को, हाँ भारत से बात शुरू हुई। बहरहाल ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट है कि अगर आपने यखनी बनाई तो उसे बड़ी मिकदार में बनाकर स्टॉक कर लें, और उसे छोटे छोटे प्लास्टिक बैगों या आइस क्यूब ट्रेज में डालकर फ्रीज कर, ठीक है, आइस क्यूब ट्रेज में। हमारे आधे ज्यादा तो जुमला ही जो है वो अंग्रेजी का होता है, लेकिन कम से कम दिल में तो हो ना नफरत, या दिल में तो हो ना कोई कराहियत, कोई जज्बा तो हो ना दिल में कि भाई उनसे हमें आजादी चाहिए। लैंग्वेज को छोड़ने में तो और पता नहीं कितनी जनरेशन लगेंगी हमें, लेकिन दिल में कम से कम वो कोई एक कसक होती है, तो फिर अल्लाह ताला आसान भी बनवा देते। तो अगर आपने यखनी बनानी है तो उसे बड़े मिकदार में बनाकर स्टॉक कर लें, और उसे छोटे छोटे प्लास्टिक के बैगों या आइस क्यूब ट्रेज में डालकर फ्रीज कर। जब आपने मेहमानों के लिए कुछ पकाना हो तो कभी भी किसी ऐसी रेसिपी तरकीब का तजुर्बा ना करें जो आपके लिए नहीं, बल्कि तजुर्बा उस वक्त करें जब आपने खुद खाना। तो तजुर्बात जो है वो अपने ऊपर करने चाहिए, मेहमानों के ऊपर नहीं करने चाहिए, ठीक है? कम से कम खाने पीने का, तो यानी मेहमानों पे तो खैर वैसे भी तजुर्बा नहीं करना चाहिए, लेकिन खाने पीने के तजुर्बात जो हैं, जो कि आप हलाल और नॉन टॉक्सिक किस्म का खाने का तजुर्बा कर रही हैं, वो अपने ऊपर कर लें। और अगर आप जो है वो खुदा ना खास्ता कोई गलत किस्म की चीज का तजुर्बा कर रही है, तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने क्या बनाए, गिनी पिग्स, ठीक है? तो वो गिनी पिग्स के ऊपर तजुर्बात, जैसे साइंसदान लोग किया करते हैं ना चूहों के ऊपर, तो वो अपने ऊपर भी नहीं करने चाहिए, वो चूहों पे करने चाहेंगे। मतलब साइंसदानों की याद करते हैं, हम तो नहीं कह रहे कि आप चूहों के बारे में पढ़ रहे इस तरीके से। बहरहाल, जब आपने पास्ता बनाना हो तो डिब्बे के ऊपर जो हिदायत लिखी होती हैं उससे 1 मिनट कम पकाएं और बाकी को पैन में डाल करके पकाएं। अच्छा, बाकी को पैन में डाल करके, ये आपको भी समझते रहेगा। अगर आपने लहसुन को काटा है तो अपने हाथों को धोने से पहले स्टील के सिंक पर जोर जोर से रगड़ें, इस तरह वो जो हाथ से उसकी बू आती रहती है वो खत्म हो जाएगी। तो लहसुन की तो स्मेल होती है, तो वो उसको खत्म करने के लिए हाथ पहले रगड़ें सिंक के ऊपर, फिर वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको पैन में मजीद ऑयल डालने की जरूरत हो तो किनारे पर डालें, दरमियान में डालेंगी तो वो उछलेगा। अच्छी बात। डीप फ्राई द होल मिक्सचर फॉर 5 सेकेंड्स सो दैट ईच पार्ट ऑफ मिक्सचर बी सीन, सो दैट द मिक्सचर बी सेव्ड फ्रॉम स्टिकिंग टू द पैन। यानी सारे मिक्सचर यानी मुरक्कब को 5 सेकंड तक तेल में डालकर फ्राई कर लें। इस तरह करने से सारे का सारा मिक्सचर नजर आता रहेगा और उसका फायदा यह है कि मिक्सचर कढ़ाई पर नहीं चिपकेगा। अच्छा, वैसे तो क्लास का टाइम खत्म हो गया है, और कितना आपको ये यहाँ पे अभी रोक देते हैं, क्योंकि साहब क्लास की ड्यूरेशन बदलने करने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई मशवरा देना हो तो कमेंट को बता सकते हैं। इसके बाद जो है वो 1 2 3 4 तकरीबन 7 पेजेस के और इसके अंदर टिप्स हैं, कुछ टिप्स। फिर उसके बाद हम जो है ना वो अपने असल मौजूद को बताते। अच्छा, क्या लिखा, एक अच्छी वाइफ को कैसा होना चाहिए? एक अच्छी वाइफ को ऐसा होना चाहिए कि उसके शौहर का वो दिल खुश हो, ठीक है? जायज तरीके से, आराम तरीके से, बल्कि विद इन द बाउंड ऑफ शरीया, उसको देख करके उसके शौहर का दिल खुश हो। ये तो एक जुमले में जवाब हो गया। बाकी है कि मिसाली बीवी के टॉपिक के ऊपर हमारे हजरत जी ने भी बयान किए हैं, वो रिकॉर्डेड शक्ल में भी मौजूद हैं, किताबी शक्ल में भी मौजूद हैं, और हम उनको बाकायदा इसी क्लास के अंदर तफसील के साथ डिस्कस भी कर चुके हैं। तो उनकी रिकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, उसमें बहुत सारी उसी तफसील मौजूद हैं। एक अच्छी बीवी को कैसे चाहिए कि हम उनको सुने और वो इल्म हासिल करें। सबको बल्कि तौफीक अता फरमाए। वा दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।